हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। विहा को बेहोश देखकर वेदांत के हाथ पांव फूलने लगे थे। डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने घबराहट से सूखे अपने होठों पर जीभ फेरी और फिर खुद को संभालते हुए जल्दी से विहा को अपनी बाहों में उठाया और उसे बेड पर लेटा दिया। उसने हद से ज्यादा घबराते हुए जल्दी से अपना फोन ढूंढा और फिर एक डॉक्टर को कॉल लगाया। डॉक्टर ने दो रिंग के बाद फोन उठा लिया। जैसे ही उसने फोन उठाया, वेदांत ने घबराते हुए कहा, वो मेरी वाइफ, पता नहीं कैसे सामने कोई फीमेल डॉक्टर थी। जब उसने देखा कि वेदांत इतना ज्यादा घबरा रहा है तो उसने जल्दी से कहा, अब घबराना बंद करिए, पहले शांत हो जाइए और आराम से बताइए क्या हुआ है आपकी वाइफ को। डॉक्टर की बात सुनकर वेदांत ने डर का घूंट पीते हुए जल्दी से कहा, मेरी वाइफ बेहोश हो गई है, पता नहीं कैसे। वो डॉक्टर अब तक अपने घर से निकल चुकी थी। अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोली, आप चिंता मत करिए, मैं बस आ रही हूँ। डॉक्टर ने अपनी जरूरत का सारा सामान ले लिया था और अब वो फुल स्पीड से गाड़ी ड्राइव करते हुए दीवाने हाउस आ रही थी। पर्सनल डॉक्टर थी इसलिए उसे वहाँ आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। वो करीब 7-8 मिनट की दूरी पर ही रहती है। फोन कट होने के बाद वेदांत के हाथ बुरी तरह कांपने लगे थे। वो फोन को छोड़ते हुए जल्दी से वापस विहा के पास गया और फिर रोते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर बोला, टोमैटो, प्लीज उठ जाओ, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो, आगे से जैसा तुम बोलोगी वैसा मैं कर दूंगा, और वो भी एक बार के बोलने पर प्लीज अभी के लिए तो उठ जाओ, ऐसे सोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। पर अफसोस, विहा को वेदांत की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इनफैक्ट उसे वो बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। वेदांत के आंसू लगातार विहा के हाथों पर गिर रहे थे। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर लगभग दौड़ते हुए उसके कमरे में आई, लेकिन डॉक्टर के कदम दरवाजे पर ही रुक गए जब उसने देखा कि कमरे का क्या हाल कर रखा है। उसने आंखें बड़ी करते हुए वेदांत की तरफ देखा। वेदांत जैसा जेंटलमैन ऐसी हरकत नहीं कर सकता था, वो उसे बहुत अच्छे से जानती थी। वेदांत जल्दी से बेड से उठा और डॉक्टर के पास आते हुए बोला, आप वहाँ क्यों खड़ी है, इसे देखिए ना, इसे क्या हो गया है। थोड़ी देर पहले तो अच्छा भला मुझे लड़ाइयाँ कर रही थी, फिर अचानक ही रोते रोते बेहोश हो गई। इसे एक बार उठा दो, फिर मैं कभी इसे ऐसे परेशान नहीं करूँगा। डॉक्टर मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो मुस्कुरा नहीं पा रही थी। वो जल्दी से बेड के पास आई और फिर विहा की नब्ज चेक करने लगी, जो ज्यादा धीमी नहीं थी। फिर उसने उसका टेम्परेचर चेक किया, वो भी उसे नॉर्मल ही लग रहा था। फिर उसने वेदांत की तरफ देखते हुए कहा, आप बाहर जाइए, मैं चेक करके बताती हूँ कि इन्हें क्या हुआ है। वेदांत ने डॉक्टर की बात सुनकर तुरंत सिर हिलाया और उसने घबराहट से कहा, ठीक है, आप चेक करिए, और फिर तेज कदमों से कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही डॉक्टर ने गहरी सांस ली। वो विहा के पास आई, उसका माथा छुआ, बिल्कुल हल्का सा गर्म, लेकिन खतरनाक कुछ भी नहीं। डॉक्टर ने अपना बैग खोला, विहा की पल्स चेक की, फिर उसके पेट पर बहुत हल्के हाथों से दबाव डाला। उसके चेहरे पर धीरे धीरे हैरानी और समझ का मिला जुला भाव उभरने लगा। कुछ मिनट बाद उसने एक छोटा सा प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप निकाला और अपना चेक पूरा किया। रिजल्ट जैसे ही साफ हुआ, डॉक्टर खुद को मुस्कुराने से रोक न पाई। ओह, तो वजह ये है, वो खुद से ही बुदबुदाई। उन्होंने धीरे से विहा के सिरहाने की चादर ठीक की और दरवाजा खोलकर बाहर आ गईं। वेदांत तुरंत तेज कदमों से उसके पास आकर खड़ा हुआ। डॉक्टर, क्या हुआ, सब ठीक है ना, इसे कुछ हो तो नहीं गया। डॉक्टर ने उसके बेचैन चेहरे की तरफ देखते हुए नरम आवाज में कहा, वेदांत, पहले आप शांत हो जाइए, आपकी पत्नी को बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ है, तो फिर ये अचानक बेहोश क्यों हो गई? वेदांत की आवाज अभी भी कांप रही थी। डॉक्टर ने हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, क्योंकि विहा लगभग एक हफ्ते की प्रेग्नेंट है। वेदांत जैसे पत्थर बन गया, उसकी आंखें फैल गईं, होंठ खुलकर रह गए। क्या? डॉक्टर ने सिर हिलाया, हाँ बिल्कुल, बेहोशी भी उसी कारण हुई है, आपको बधाई हो। कुछ पलों तक वेदांत सफेद चेहरे के साथ सिर्फ खड़ा रहा, हक्का बक्का, जैसे उसे अपनी सुनाई बातों पर यकीन ही न हो रहा हो। उसे लगा जैसे धरती एकदम रुक गई हो। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, मेरी टोमैटो प्रेग्नेंट है। उसके हाथ अनजाने में कांप गए, दिल में अजीब सी हलचल फैल गई। डर, खुशी, हैरानी सब एक साथ एक ही पल में उसे महसूस हो रहे थे। डॉक्टर के जाते ही वेदांत धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ। दरवाजा बंद होते ही पूरा कमरा एकदम शांत हो गया, सिर्फ विहा की हल्की सी सांसों की आवाज। वो कुछ सेकंड दरवाजे पर खड़ा ही रह गया, जैसे उसकी हिम्मत नहीं हो रही हो पास जाने की। उसकी नजर अपने आप विहा पर टिक गई। थोड़ी देर पहले आग बबूला सी उसकी टोमैटो फिलहाल उसे इतनी नाजुक लग रही थी कि वेदांत का सीना कस गया। वो धीरे धीरे उसके पास आया और उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया। विहा की बंद पलकें, उसका शांत चेहरा और ये सच कि उसके अंदर एक छोटी सी जान पल रही है, वेदांत का पूरा दिल जैसे मोम की तरह पिघल गया। उसके अंदर उलझन थी, ये कैसे हो सकता है। डर था, क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा। और सबसे ज्यादा बेहिसाब प्यार था, जो वो कभी जबान से नहीं कह पाया था। उसने कांपते हाथों से विहा की उंगलियां पकड़ी। उसकी उंगलियों की गर्माहट महसूस होते ही वेदांत की आंखें हल्की सी नम हो गईं। वो बहुत धीमे से फुसफुसाया, तुम बहुत शैतान हो टोमैटो। वो हल्की सी हंसी हंसा, लेकिन उस हंसी में डर भी था और राहत भी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उम्मीदों से, डर से और एक नए एहसास से कि अब वो सिर्फ पति नहीं किसी का पिता बनने वाला है। ये फीलिंग शायद वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकता था। उसका दिल किसी छोटे बच्चे की तरह एक्साइटमेंट से भर गया था और उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई थी। उसने विहा के बालों को कान के पीछे किया और बहुत धीरे लगभग टूटती आवाज में बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा टोमैटो, कसम से अब नहीं लड़ूंगा, बस आंखें खोलो प्रिया। कमरे में कोई जवाब नहीं आया, लेकिन वो विहा का हाथ पकड़कर वहीं बेड पर उसके बिल्कुल करीब बैठा रहा, इस डर से कि कहीं वो पलक झपकाए और विहा फिर से खो जाए। अचानक उसके दिमाग में आया कि अभी विहा की ये उम्र नहीं थी कि वो एक बच्चे को संभाल पाए, और इस डर से घबराहट के मारे उसकी पकड़ विहा के हाथ पर थोड़ी ज्यादा कस गई, जिसके साथ ही विहा ने कसमसाते हुए आंखें खोलकर वेदांत की तरफ देखा। विहा को अपनी बॉडी बहुत ज्यादा थकी हुई महसूस हो रही थी, इतनी ज्यादा कि वो खुद से उठकर बैठ भी नहीं पा रही थी। उसकी इन नाकाम कोशिशों की वजह से वेदांत जैसे फिर से होश में आया। उसने जल्दी से उसे संभाल कर बेड पर बैठाया और फिर एक तकिया उसकी गर्दन के पीछे लगाते हुए बोला, अब तुम कैसा फील कर रही हो टोमैटो, किसने कहा था तुम्हें इस हालत में पूरा दिन भूखा रहने के लिए। विहा जो याद करने की कोशिश कर रही थी कि उसे आखिर हुआ क्या था, उसने जैसे ही वेदांत की बात सुनी उसे एक झटके से सब कुछ उसकी आंखों के सामने बिल्कुल किसी फिल्म की रील की तरह चल गया और उसने जल्दी से गुस्से में कहा, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं भूखी क्यों रही, मैं तो आपकी लंबी उम्र के लिए उपवास रख रही थी, अब तक तो चंदा मामा बूढ़े भी हो गए होंगे, मेरी माँ ने तो अगर चांद लेट से देखा तो उसे बूढ़ा चांद कहते हैं, और ये सब आपकी वजह से हुआ है, मुझे आपकी लंबी उम्र मांगनी ही नहीं चाहिए थी, मुझे अपनी लंबी उम्र मांगनी चाहिए थी ताकि मैं आपके जितना जी सकूं, क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं, अगर आप पहले टपक जाएंगे तो मैं अकेले क्या करूंगी।
विहा के पास थोड़ी देर पहले जो गुस्सा था अब वो अजीब सी फिक्र में बदल गया था, और उसके मूड स्विंग्स की वजह अब वेदांत को साफ साफ समझ आ रही थी। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और जल्दी से उसे अपनी बाहों में समेटे हुए कहा, तुमने मुझे कितना डरा दिया था टोमैटो। वेदांत को अब अच्छा महसूस हो रहा था विहा को अपने पुराने अंदाज में देखकर।